काम यार, होशी तुम्हारे पास है? हाँ
हेलो जनाब, सरकार वो भाग गया। मैंने टॉयलेट जाने के लिए उसे खोला, मेरे सर पे मारा और भाग गया।
इस्माइल किया साहब, क्या आप मोहतरमा मालिया सोराबी और उनके कोलिग्स की बातों की तस्दीक करते हैं?
मेरी बहन, तुम्हारे शोहर के बारे में अभी तक कोई भी इत्तला नहीं मिली। मेरी बहन, 10 दिनों से तुम रोजाना यहाँ आ रही हो और पूछती हो कि कोई खबर हुई। अगर कोई खबर मिली, चाहे छोटी सी भी खबर हो तुम्हारे शोहर के बारे में, कोई सुरागात आया तो फौरन तुम्हें इत्तला देंगे। लेकिन आप फिर कल सुबह यहाँ होंगी, तशरीफ ले जाइए, जाइए मेरी बहन।
आपकी गाड़ी मैंने पार्किंग से निकाल ली।
मेरा अबू के घर चलिए प्लीज।
कामयार साहब ने आपको बुलाया कि घर आइए, कुछ काम है।
मेरे अबू के घर चलिए प्लीज।
एक बात कहूं,
आपका सर बेहतर है?
ठीक है, आप जो चाहे तंस कर लें, लेकिन कामयार साहब का क्या? कामयार साहब उस घर में तन्हा पड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, और कोई भी नहीं है वहां पर, बिल्कुल तन्हा है। उनका सब कुछ जलकर राख हो गया है। इस वक्त हम सब होशी खान के लिए परेशान हैं। आप अपने माँ बाप की पनाह में चली जाएंगे, कामयार साहब कहाँ जाएंगे? उन्होंने सब कुछ होशी खान के लिए किया है। उन्होंने होशी खान को वनक वाले घर में जबरदस्ती नहीं भेजा था कि वहां डेकोरेशन चेंज करे। वो चाहते थे कि होशी मियां को अपने हाथों से पुलिस हवाले ना करे। अगर आप होती तो इस पर राजी होती कि वो जाकर वाले जुर्म कर ले? उन्होंने सब कुछ होशी खान लिया।
मैं किसी से नाराज नहीं हूं दाऊद साहब, आजकल मैं ऐसी ही हो गई हूं। अब चल रहे हैं या मैं दूसरी गाड़ी ले लूं? मेरे अबू के घर चलो।
कम से कम बच्चों को उनके पास ले जाने दें।
हेलो जी, कहिए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, मेरा कस्टमर नंबर 213 है। आपका नंबर एजेंसी से लिया है। क्या आप अपना मोबाइल फोन इन खातून को दे सकते हैं जो आपकी गाड़ी में हैं?
जी हाँ जी हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। लीजिए आपसे काम है इनको।
मुझसे?
जी
फरमाइए। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, उस नाइंसाफ इंसान ने अकरम के जहेज के सामान को एक ट्रक में डलवा कर हमारे घर भिजवा दिया है। बुजुर्ग भी गुस्से में घर से बाहर निकल गए, कह रहे थे कि अम्मी हाफिज का ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे याद रखे। अब कहाँ है खुदा के लिए, जल्द से जल्द फौरन वापस आ जाए हाफिज के, अम्मी हाफिज से सब कुछ कर रहे।
ठीक है ठीक है, ये लो भैया, माफ करना, जरा सब वापस चले चलो।
अस्सलाम वालेकुम।
तो बहू बेगम, तुम सीधी असल बात पर उतर आई, जो दिल में आया कर लिया। अकरम, अकदस, बुजुर्ग और दूसरों का दिल तो दिल ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा, सबको एक साथ हवा में उड़ा देना चाहती हो। सारा सामान इकट्ठा करती हो, अपने नए घर से अकरम के जहेज को गिफ्ट पेपर में लपेट कर बुजुर्ग के घर भेज देती हो।
वहाँ स्टोर रूम नहीं है।
वो अकरम का घर है।
नहीं है।
है।
जब मालिक मकान घर से निकाल रहा है तो क्या करूं? सामान उठाकर सड़क पर चली जाऊं और खैमा लगाकर वहां बैठ जाऊं क्या?
मालिक मकान की बात का जवाब है, वो काफिर तो नहीं है। उसे सूरत हाल बताती, इस्माइल की हालत बताती, फिर देखते हैं कि वो नरम पड़ता है या नहीं।
किसी के सामने अपना रोना रोना अच्छा नहीं।
रहम और मुरव्वत वो आती है?
रहम और मुरव्वत मुझे किससे सीखना चाहिए था? इस्माइल से।
रहम यानी अकरम। तुम समझती हो ये बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं? मैं पागल हो गई हूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुमने जगह कम होने की वजह से अकरम का जहेज वापस किया।
धीरे धीरे मैं इस नतीजे पर पहुँच रही हूँ कि आप मेरे मामलात में मुदाखलत कर रही हैं।
मुदाखलत? अपने हाथ में पानी लिए मैं आग के करीब घूम रही हूँ, ये मुदाखलत है?
कौन सी आग? आग तो आपके बड़े बेटे के दामाद की लगाई हुई है।
बुसर,
बुजुर्ग गया भाड़ में।
उस रात अस्पताल के सहन में तुमसे कहा था कि अगर अकरम को साथ ले जाओगे तो हमेशा उसके साथ जाना होगा, कहा था या नहीं? कहा था या नहीं?
जी कहा। जी जी।
तो कहा था? मैंने कहा था कि जिम्मेदारी से न भागना, कहा था या नहीं? मैंने कहा था अब जब तुम अकरम के साथ जाना ही चाहते हो तो हमेशा उसके साथ जाना होगा, और अगर तुम नहीं जाओगे तो नतीजा खुद भुगतोगे। मैंने कहा था या नहीं लड़के?
कहा था।
हाँ तो कहा था, तो ठीक है।
मैंने कहा जूते समेत मेरे घर में आ गए हो।
जाओ जाओ अपनी हांडी देखो।
एक दूसरे से लड़ो नहीं।
मुदाखलत ना करें। ये बुलडोजर के साथ मेरे घर में आई, मेरी पूरी जिंदगी को तबाह हो बर्बाद कर दिया। अभी एक ट्रक में जहेज वापस भेजा है और फिर कह रही कि जूते।
मैंने या तुम्हारे भागे हुए दामाद ने तुम्हारा घर बर्बाद किया?
मैं अमीर हाफिज की बात कर रहा हूँ।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि बात तुम्हारे दामाद की ही हो, इसकी बात की वजह से नहीं। क्या उसके मन में कोई जगह ही नहीं? मैंने इस औरत की गैर मौजूदगी में अस्पताल में अपने बेड के साथ वाली कुर्सी पर इसकी याद भुला दी है, और इस वक्त मेरे जहन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, ऐसा सवाल जो एक बड़ी हड्डी की तरह मेरे गले में फंसा हुआ है। तुम शुरू से ही जानते थे कि तुम्हारा दामाद ही कसूरवार है, उसी ने आग लगाई, इसके बावजूद मुझे फंसवा दिया, पूरे मोहल्ले के सबसे शरीफ आदमी।
मुझे कुछ नहीं मालूम था, और चूंकि कुछ नहीं मालूम था इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैंने अपने आप को गुनाह से बचाया। ये तो खुदा ही जानता है, वो जानता है कि वो किस तरह मेरी गलतियों का इजाला करे। तुम्हें मालूम है कि मुझे किसी भी शख्स का मखरूज होना नहीं पसंद है, और नहीं हूं एक सेकंड के लिए भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि अपने बेटों को सिखाओ कि उसे मर्द होना चाहिए। वक्त नहीं मिला ना?
नहीं, वक्त नहीं मिला। इसके बदले में मैंने उससे कहा कि लड़के अपने अतराफ में गौर से देखो। उसने देखा लेकिन कोई मर्द दिखाई नहीं दिया कि मर्दानी सीखता।
मारो और तो पड़काओ।
तो सारी की सारी तुम्हें मिली है बड़े भाई। हाँ बड़ा भाई, जब तुम्हारा भाई अस्पताल में पड़ा हुआ एड़ियां रगड़ रहा था तो तुमने कहा कि औलाद भाड़ में जाए, जाकर देखो कि मेरा भाई जिंदा है या मर गया। बीवी कौन है मेरी?
तुम्हारी बीवी मैं हूँ जो तुम्हारे साथ बूढ़ी हो गई है। मेरा एहसान है।
एहसान है, एहसान है, इसे पता ही नहीं है कि 20 साल से हर दिन ज्यादा जुनूनी, ज्यादा फिक्रमंद, ज्यादा सफर होती जा रही है। अरे भाई, दुनिया में दूसरे लोगों के भी तो बच्चे होते हैं। अमीर हाफिज के पैदा होने के बाद वो नहीं मुस्कुराहट और वो मोहब्बत कहाँ गई? क्या दुनिया भर की औरतें बच्चा पैदा करने के बाद अपने शौहर की तरफ से तमाम तवज्जो, मोहब्बत और मुस्कुराहट को खत्म कर देती है जो तुमने किया? इन कुछ दिनों में मुझसे क्यों ना पूछा कि तुम शुरू से ही बुलहवस थी, आप हो गए हो? क्या मुझे अपने बच्चे से जलना चाहिए कि काश मेरी बीवी की जो मुस्कुराहट उसके लिए है उस जैसी मेरे लिए भी हो? अरे भाई, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तो मोहब्बत की जरूरत है ना। एक घर एक मेज और सिर्फ एक कप चाय, वो भी अमीर हाफिज के लिए। एक घर बिस्तरों की 2 अलमारियां और स्त्री शुदा कपड़ों की 2 अलमारियां, वो भी सिर्फ अमीर हाफिज के लिए। बात सिर्फ चाय और स्त्री शुदा कपड़ों की नहीं है, समझी? बात तवज्जो देने की है, बात देखे जाने की है। इस घर के सामने कुत्ते को बांधो तो अभी तुम कदम घर से बाहर नहीं निकालोगे कि 1000 बार नखरे करेगा, तुम हिलाएगा कि ताकि उसे देखा जाए। तो फिर क्या इंसान को देखे जाने की जरूरत नहीं होती? कहां तुम्हारी आंखें, कहां तन्हाई, कहां मोहब्बत? क्या तुम्हें पता है कि इन सारे बरसों में मेरे सामने, अपने शौहर के सामने भी तुम सफर स्कार बांधे रही? इसलिए कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं था कि मैं शौहर हूं। एहसान जताने की बात है? कैसा एहसान? अच्छा अम्मी, बड़े और छोटे की बात है, अगर हम किसी को अपना बड़ा ना मानना चाहे तो ये बता क्या करना होगा?
मैं तुम पर अपनी बुजुर्गी जताने नहीं आया हूँ। कम अज कम मुझ में तो ये लियाकत नहीं थी इस्माइल साहब। मैंने जो भी किया वो बहुत ही कम था। मैंने अपने आप को बस छोटा ही बनाया था ना, कि तुम बड़े हो गए, ऊंचे हो गए, बड़े हो गए, इतने बड़े कि मेरे सामने खड़े होने लगे। तो खड़े रहो, इतनी देर तक खड़े रहो कि हकीकत समझ में आ जाए। मैंने तो अपनी उंगली शहद में डुबो कर जिसके मुंह में भी डाली, उसने शहद के साथ मेरी उंगली भी काट ली।
Thank you.
लेकिन उसके दिल का दावा हम लोगों और तुम्हारे दरमियान खुदा फैसला करेगा। अदालत में तलाक के लिए आने के लिए नासिर के फोन का इंतजार करना।
भाई साहब बहुत ज़हमत किया आपने।
बहुत शुक्रिया।
इन कार्टूनों में टूटने वाली चीज़ें हैं, बीच बीच में रखो कि नुकसान ना पहुँचे, ऊपर तक ना भरना। पिछले कुछ वर्षों में चीनी माल ने उसके शौहर को बर्बाद कर दिया था। उसका शौहर जूतों का काम करता था, लेडीज जूतों का। उसका नाम मिकाइल था। जोहरा के शौहर का नाम ये कि मुझे कैसे मालूम हुआ, जोहरा का शौहर काम तो किस तरह चीनी माल के वजह दिवालिया हो गया। रहने दो, ये कि दिवालियापन का सबब उसका सबब कुछ उसके हाथ से चला गया, जो कि एक 20 मीटर की दुकान थी, उसके पास कुछ नहीं था कि किसी का मकरूज रहता, ये भी रहने दो। ये कि मुझे मालूम है कि दिवालिया होने के बाद भी उसने उफ नहीं की और ड्राइविंग करके और गाड़ी चलाकर उसने अपने घर वालों का खर्चा चलाया, ये भी रहने दो। ये कि मुझे ये भी मालूम है कि एक रात उसने गाड़ी चलाते वक्त अपनी बीवी जोहरा के लिए एक गुलदस्ता खरीदा था कि घर ले जाकर उसे देगा और उसी रात उसका इंतकाल हो गया, ये भी रहने दो। मैं ये सब बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरी नाकिस अकल मुझसे कहती है कि आप उससे मिलना चाहते हैं, लोरा से, क्योंकि आप समझती हैं कि आपको उसकी बदवा लगी है। ठीक है, आपको ले चलूंगा अभी इसी वक्त, आपको ले चलूंगा ताकि आप उससे मिल लें और आपका दिल हल्का हो जाए। आप अपने शौहर पर तवज्जो दीजिए, आपके शौहर बर्बाद होते जा रहे हैं, वह ऐसी चीज की तरफ जा रहे हैं जिसकी इब्तदा ही इंतहा है, ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं कि जिसकी इब्तदा और इंतहा एक ही है, तबाही। अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि बद्दुआ ने आपकी जिंदगी खराब नहीं, गलतियों ने यह काम किया, एक दूसरे को ना समझने से बर्बादी आती है, एक दूसरे के पीछे अब मुसलसल एहानत और बुराई करने से जिंदगी खराब होती है। आप कहती हैं झोला और बद्दुआ, ठीक है, मैं आपको उससे मिलवाने के लिए ले चलूंगा। उठिए, अपनी जिंदगी को संभालिए, अपनी गलतियों से सीखिए, इस्माइल को देखिए।
मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, मुश्किल दिन। उन छोटे और बारीक महलों में पड़ोसियों का मजाक उड़ाना, पीठ पीछे बात करना, इशारे, क्या हुआ है जो उसके शौहर ने उसे वापस भेज दिया। बातें बहुत ज्यादा थी, मेरा भाई मेरा मेहर उड़ाता था और मुझे सुनाता था। उड़ाना क्या था और सुनाना क्या था? तुम लोगों ने अपनी शादी एक शानदार हॉल में की थी, मुझे अभी भी याद है। शादी के बाद जब तुमने अपना हाथ इस्माइल के हाथ में दिया और हॉल से बाहर आई तो रोड के उस तरफ खड़ी में खून के आंसू बहा रही थी। आसमान की तरफ देखा और कहा, या खुदा कहाँ हो, मुझे भूल गए क्या? फिर अचानक एक मोटरसाइकिल वाले के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया और वहीं बेहोश हो गई मैं। जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया तो मेरे सिराने मेरी माँ थी और बगल वाले बेड में एक औरत थी जिसके भाई का नाम मिकाइल था। 6 महीने नहीं हुए कि मिकाइल का आना जाना शुरू हो गया, वो भी किस वक्त, जिस वक्त मैं इस दुनिया के हर मर्द से बेजार थी। अपनी माँ के कहने पर उसे घर आने दिया और कह दिया इस बेजारी के बारे में। जूते के कारोबार में था और पढ़ा लिखा और बावफा। उसने कहा, मैं कभी तुम्हें पीठ नहीं दिखाऊंगा। सच कह रहा था, कभी पीठ नहीं दिखाई। बहुत आया और गया। एक दिन जब वो फिर अपनी माँ और बहन के साथ हमारे घर पे आया तो, और जब मेरे पास कोई बहाना नहीं रहा तो मैंने उसे देखा और कहा, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपना नाम बदल दो। उस दिन तक जो शर्त मैंने रखी थी उसने सब मान लिया था। उस दिन पहली बार उसने मुझे ना कहा। मैं समझ गई कि मैं उसे चाहूंगा। हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे फिर पढ़ने लिखने में लगा दिया। मैंने इश्क को मिकाइल के साथ सीखा। जंग के वक्त जंगियों से पाइता और जब घर में होता तो घर की मदद होता। जंग जब खत्म हो गई तो हमारी 2 बेटियां थी, परिवेश और परिवेश। मिकाइल को जंग का हिस्सा नहीं चाहिए। चाहिए था तो उसने फिर अपनी दुकान खोली। जंग के सिपाही सुलह करने वालों से ज्यादा प्यारे होते हैं। हमारी बेटियां 20 साल की हो गई और मिठाई की यादें जिंदा करती हैं। पढ़ रही हैं और उनका ध्यान पढ़ाई और खुदा की तरफ है और खुदा की रहमत हमारी जिंदगी में है। कभी कभी मैं अपने साथ सोचती हूँ कि ये जो इतनी सारी खुशियां मुझे मिली है, मैं इनके लायक हूं भी कि नहीं, सही तरह से शुक्र अदा किया कि नहीं। कभी तुम्हारे और इस्माइल के बारे में नहीं सोचा और कभी तुम लोगों का बद्दुआ नहीं। मुझे मीकाइल और उसके खुदा से इतना मिला है कि मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरी बेटियां नूडल्स बहुत पसंद करती हैं और आप अगर रुके तो एक और आदमी को तो हम खिला ही सकते हैं। वाकई नाश्ता बहुत ही ज्यादा था, दोनों को भूख भी लगी है, बस दिल चाहता है घर जाके फौरन आराम।
मुझे तो सिर्फ सोना है।
मुझे भी।
चलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
खुश आमदीद बेगम साहिबा।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, बच्चों से नाराज ना हो बेगम साहिबा, जवान है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लीजिए ना। ओफो, प्लेट लाना भूल गई बेगम साहिबा, मेरा आधा सामान अभी कमरे में ही है, अभी जाकर लाती हूँ, माफ कीजिएगा।
गली कूचों में घूम घूम कर तुम्हारे शोहर को तलाश कर रही है।
همان هایی که اهل راز گردند دیگر با خویشتن دم ساز گردند، جراحت در جگر دارند و افسوس، کجا یاران رفته بازگردند.